कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की जब दाना लेकर चलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की खोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोता खोर लगाता है। जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती। लहरों से डर कर नौ का पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
शांति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे संडे टॉक में। एक बहुत ही सत्य वाक्य है कि किसी भी योद्धा की जो पराजय है वो उसके विरोधी के कारण नहीं, बल्कि उसके स्वयं के अंदर बैठे हुए डर के कारण होती है। तो हम सभी क्या है, हम सभी अपने अपने जीवन के योद्धा हैं। तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने डर को, भय और उससे होने वाली चिंताओं से खुद को मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए आज हमारे बीच में आदरणीय रुपेश भाई जी उपस्थित हैं। आप पिछले 25 से भी ज्यादा वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और आप स्पार्क विक मेंबर फैकल्टी भी हैं। यूथ विंग में भी भाई जी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अनेकों टीवी शोज के माध्यम से जैसे समाधान, छूलो आसमा, एक मुलाकात से अनेकों को उनकी उनकी समस्याओं के समाधान पहुंचाने के निमित्त भाई साहब बने और आप अपनी सेवाएं सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अनेक जनों को प्रदान कर उनको एक नई जीवन जीने का रास्ता बताते। तो भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशन वीक संडे टॉक में और हम सभी आज आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के डर, भय और सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आदरणीय भाई साहब आपसे हम ओवर टू भाई जी।
शुक्रिया बहन। ओम शांति। सर्वप्रथम तो आज करवा चौथ है तो हमारी सभी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को, जो आज के इस शुभ दिवस पर अपने पतियों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं, तो हमारी भी मंगल कामना, शुभ कामना कि आपकी शुभ आश, शुभ कामना पूर्ण हो। केवल पति देव ही नहीं लेकिन सारे ही प्रियजन न केवल दीर्घायु हो लेकिन स्वस्थ हो, निर्भय हो, निश्चिंत हो और जीवन के हर मुकाम में सफलता अर्जित करें। भाइयों से भी कहूंगा कि हमारी बहनें व्रत रखती हैं, आप भी उनके लिए ऐसे ही व्रत न सही लेकिन हृदय में बहुत प्यार, सम्मान, अपनापन और साथ ही साथ वो जिस चीज की अधिकारी है उसे अवश्य प्रदान करें, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए की तरह है ना, आपस में जब प्रेम सम्मान से चलते हैं तो घर गृहस्थ बहुत सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। गीत बहुत सुंदर हम सुन रहे थे कि अपनी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए प्रकाश की ओर चलने का, सत्य की ओर चलने का, सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। गीत बहुत सुंदर हम सुन रहे थे कि अपनी कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए प्रकाश की ओर चलने का, सत्य की ओर चलने का, आनंद की ओर चलने का। और जब तक जीवन है, जब हम ये मान लेते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, समझ लिया, तो वहां एक ठहराव आ जाता है। तो हम कितने भी विद्वान, कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी अनुभवी, जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर भी बढ़ चुके हैं, लेकिन सीखना, जानना, समझना, प्रकाश की ओर चलना, ये अनवरत चलता रहे। और अपनी खिड़कियां, दरवाजे, कहते हैं पैराशूट भी तभी काम करता है जब हम खुलकर, मतलब खुल जाता है, तो हम भी अपने मन बुद्धि को सुंदर अच्छी बातों के लिए सदैव खोल कर रखें। और आप सब यहां उपस्थित हैं बुद्धिजीवी, अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए अनुभवी, यहां आपकी उपस्थिति ही इस बात का परिचायक है कि आप हमेशा कुछ नया पाना, कुछ नया समझना, आगे की ओर बढ़ना, इसके लिए आप प्रयासरत रहते हैं, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। विषय, हम कैसे निर्भय हो जाएं, भय से मुक्त हो जाएं। जीवन में परिस्थितियां और बातें तो आती हैं लेकिन उसमें भी कैसे अचल रहें, अडोल रहें, हमारी जो अंदर की स्थिति है, आनंद है, खुशी है, वो गुम ना हो जाए। आपने कईयों को देखा होगा ये कहते हुए कि हम किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, और वहीं धपाक से यदि एक छिपकली उनके सामने गिर जाती है तो चिल्ला कर भाग पड़ते हैं। अंतर मन से हम सबकी ये चाहना रहती है, ये हमारी नेचर है कि हम शांत और आनंदित रहें, एक खुशगवार माहौल में रहें। कोई भी भय नहीं चाहता। आप में से कितने ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हाँ मुझे भय प्रिय है, मैं भयभीत होकर रहना चाहता, या मैं अपने बच्चों को भी भयभीत देखना चाहता, मेरे परिवार के सदस्य भी डरे सहमे रहे मैं ये देखना चाहता हूं। कोई नहीं, और वो इसलिए क्योंकि ये हमारी नेचर नहीं है, और हम में से अधिकांश ने आज के दौर में भय को कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये मान लिया है कि ये स्वाभाविक है या ये होता ही है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस पर रिसर्च किया, कार्य किया, चिंतन किया, और ये पाया कि ये हमारी इनेट क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमने इसे एडॉप्ट किया है बाहर से। यदि इनेट क्वालिटी होती तो जैसे हम शांत रहना, प्रेम के माहौल में रहना, सुखी रहना, शुद्ध पवित्र स्वच्छ रहना ये चाहते हैं, वैसे ही भय में भी रहना चाहते यदि ये हमारी आंतरिक पर्सनालिटी, आंतरिक नेचर होती। तो बाहर से आई है और हम जानते हैं कि ये हमें तकलीफ ही देती है, राइट? जब आप भयभीत होते हैं या कोई भयभीत होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? डॉक्टर्स ने तो बाहरी पैरामीटर्स बताए कि बीपी बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, किसी को डायरिया हो जाता है, हकलाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगती है, ये तो बाहरी चीज। लेकिन एक भयभीत व्यक्ति पूरी तरह से अपने निर्णय करने की, परखने की शक्ति को खो देता है, गुलाम बन जाता है, परिस्थितियां, बातें, व्यक्ति जैसे उस पे हावी हो जाते हैं, उसकी सारी चीजें बाहरी, जो भी उसकी सोचने समझने कार्य करने की क्षमता है, सब कुंद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हम ऐसी स्थिति में रहना पसंद करेंगे? और कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, छोटे या बड़े रूप में, इसका सामना हमें करना ही पड़ता है। इसीलिए शायद हमने ये मान लिया कि ये हमारी अंदर की, जैसे अनेक प्रकार की हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी नेचर है, वैसे ये भी भय भी एक आंतरिक चीज है। लेकिन नहीं, तो क्यों ये एक अंदर चीज समा गई है? कई बार पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है ना हमारे, भूत में हमने कुछ अनुभव किया भूतकाल में, वो एक भय के रूप में समा जाता है। मान लीजिए मैं बहुत अच्छी तरह से कुत्तों के साथ खेला करता था, हाँ, वो गली में घूमते रहते हैं, मैं उनके नजदीक से निकल जाता था, लेकिन एक बार मैंने किसी को कुत्ते को काटते हुए और बहुत ही खतरनाक तरीके से काटते हुए देख लिया, या मुझे उसने खतरनाक तरीके से काट लिया जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, अब तक मैं बहुत प्यार से आराम से उनके बीच से निकल जाया करता था, उनके साथ खेलता था, लेकिन आगे आफ्टर दिस एक्सपीरियंस क्या होगा? मेरे अंदर एक भय कि वो बहुत सीधा साधा शरीफ सा भी होगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर काट ना ले, पास्ट का एक्सपीरियंस उसे मैं लेके चलता हूं, डर पैदा करता है। हमारे पेरेंट्स ने जब हम छोटे थे तो कई कई चीजें हमारे अंदर डाल दें कि अरे देख तू बाहर जाएगा ना, बाहर भूत है या बाहर बाबा है, वो उठा के ले जाएगा, ये है, अंधेरे कमरे में मत जाना, वहां खतरा है, बैठ गया। इसीलिए अंधेरे में जाने से, अकेले रहने से डर, लोनलीनेस पसंद नहीं करते हम, अकेले हैं कहीं ना कहीं डर, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अंधेरे में कुछ है नहीं, लेकिन रस्सी को भी सांप समझ लेना, किसी की उपस्थिति का एहसास करने लगा कि लगना कि नहीं नहीं अंधेरा है जरूर, मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ हिलता हुआ लगा, आभास हुआ, कहीं ना कहीं अंदर वो चीज बिठा दी गई, या हमारा थॉट प्रोसेस एक नेगेटिविटी की ओर जब चला चलने लगता है वो भय पैदा करता है। यदि इसकी आदत है कि किसी भी चीज को लेके हम एक नेगेटिव दिशा में निकल पड़ते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, वो भय पैदा करता है। और ज्यादातर वही होता है, किसी चीज, किसी घटना, किसी व्यक्ति को देखा, किसी स्ट्रेंजर को देखा, पता नहीं कौन है, क्या करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हो सकता है मेरा कोई बहुत पुराना परिचित हो, बेचारा गांव से आया हो, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है हर चीज, घर को यही घर है क्या, ये है नाम है, और मुझे लग रहा है कहीं ये घुसने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पे खाली जगह है जहां से मैं घुसूं, और वो बेचारा मेरा दूर का कोई रिश्तेदार है जो गांव से आया हुआ है। मेरी ये प्रोसेस डैश, या कई बार दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देना, उनकी ओपिनियन को अपने ऊपर ज्यादा ही ले लेना, अपने विवेक का प्रयोग ना करना लेकिन दूसरों की ओपिनियन, अरे हमने देखा है, संसार देखा है, लोगों को देखा है, ऐसा होता है, अब मैंने वो नहीं देखा है, अनुभव नहीं किया है, लेकिन उसकी बात को बहुत ज्यादा गहराई से अपने अंदर ले लेना, वो भी डर पैदा करता है। मैं ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, और ट्यूशन पढ़ा के जब आता था तो अंधेरा हो जाता था, रास्ता एक सुनसान रास्ते से निकलना होता था। नई जगह पे हम गए थे पिताजी के ट्रांसफर के बाद, दिनों दिन निकल गए, मासों मास निकल गए। एक दिन किसी ने कहा कि तुम्हें रात हो जाता है, तुम किधर से जाते हो? मैंने कहा इधर से जाता हूं, ये शॉर्टकट पड़ता है। उसने कहा इधर से मत जाया करो, इधर शमशान है। तो रोज मैं आराम से अपनी साइकिल में सीटी बजाते हुए निकलता था, लेकिन जब उस दिन निकला तो फिर मैंने सीटी नहीं बजाई मन में एक भाव बैठ गया, इधर शमशान है, इधर से छम छम की आवाज ना आने लगे कहीं, यहाँ या कोई आकर के सामने खड़ा ना हो जाए। तो चीजें, सब चीजें सामान्य रहती हैं, हम अपने अंदर इसे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अंदर नहीं बाहर से हमने अपने अंदर बिठा ली है। इसीलिए ये ना सोचें कि ये चीज सामान्य रूप से, नेचुरल रूप से हमारे जीवन में शामिल है और ये चीजें होंगी, नहीं। हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह से, गहराई से समझें और इससे मुक्त होने की ओर अपने कदम बढ़ाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम में से कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा ऐसी स्थिति में रहना, क्योंकि ये हमें सफलता से भी दूर ले जाता है, शांति से भी दूर ले जाता है, और साथ ही साथ हमें जीवन का आनंद नहीं लेने देता है। हम जो अचीव कर सकते हैं, जिस शिखर पर पहुंच सकते हैं, उस शिखर पर नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि कई प्रकार के भय है ना, परिस्थिति जन्य भी, और कई बार हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं ये सारी चीजें। तो हमने अपने अंदर ले लिया तो उसने भय पैदा किया, लेकिन कई परिस्थितियां, अब देखिए जीवन में हमेशा अनुकूल स्थिति तो नहीं रहती ना। आप सभी भी अपने स्टूडेंट्स को, यदि आप टीचर हैं तो सिखाते होंगे, अपने छोटों को सिखाते, अपने साथियों से भी चर्चा में ये बात आती होगी, जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हमने जैसे अपने जीवन रूपी नैया को सागर में उतारा हुआ है, और सागर में लहरें ना हो ये तो संभव ही नहीं है। कभी छोटी लहर, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी बड़ी लहर। गीत में भी हमने सुना कि नाविक जाता है लेकिन पूरे हौसले, उमंग, उत्साह से जाता है और वहां से अच्छे रत्न लेकर के आता है, गोते भी लगाता है, रत्न लेके आता है, हर बार शायद उसे रत्न ना मिले लेकिन मिलेगा जरूर, प्रयासरत रहता है। नाव का निर्माण ही हुआ है सागर में उतरने के लिए, व्हीकल बने हुए हैं सड़क पे सर्राटे से दौड़ने के लिए, प्लेन का निर्माण ही इसीलिए हुआ है, एरोड्रम में रहने के लिए नहीं लेकिन आकाश को छूने के लिए। लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि हमेशा आकाश साफ नहीं रहेगा, हमेशा सागर शांत नहीं रहेगा, हमेशा ही सड़क सपाट नहीं रहेगा, अप एंड डाउन्स होंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगे, हम तैयार रहें उसके लिए। एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज कोई ऐसी जगह बता सकते हैं आप जहां कोई विपरीत परिस्थिति ना आए मेरे जीवन में, अनुकूल ही अनुकूल परिस्थितियां रहें, मैं बिल्कुल मतलब अनुकूल परिस्थितियों के साथ जीवन का आनंद लूं। सन्यासी उसको साथ लेके चले गए और कहा ये शमशान घाट है, यहाँ लेट जाओ। बोले महाराज यहाँ क्यों लेट जाऊं, यहाँ तो मैं मरने के बाद आऊंगा। बोले यही वो जगह है जहां तेरे जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आएंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं आएंगी। जीवन है तो स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कलाम साहब कहा करते थे कि नदी में गिर जाने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता। हम भी जीवन में हैं, संसार में हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, अपनी गाड़ी सड़क पे निकालनी ही नहीं है, निकालूंगा नहीं तो मैं अच्छा ड्राइवर कैसे बनूंगा, अपनी गाड़ी का आनंद कैसे लूंगा। परिस्थितियों के प्रति मेरा रवैया वो कैसा है इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जीव जंतु हैं, अब कुछ फियर जो नॉर्मली हम लोग अपने जीवन में फेस करते हैं, आप खुद ही अपनी लिस्ट निकालिएगा और मेरे साथ साथ चेक करते चलिए, देखते चलिए, जीव जंतु या काकरोच है या घर में छिपकली है, उससे भी फियर, उससे भी डरते हैं। सुंदर पिचाई जी जो गूगल के सीईओ हैं, भारतीय हैं, हम सबको गर्व है, एक बार अपनी बुक में मेंशन कर रहे थे एक इंटरव्यू में शायद कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, सभी लोग बहुत शांति से खाना खा रहे थे, अचानक कुछ महिलाएं जो एक टेबल पे बैठी थी जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लगा कि क्या हो गया, सभी का ध्यान उधर गया। देखा तो एक काकरोच जो था वो एक के कपड़े पे चढ़ा हुआ था, वो चीखे जा रही थी, अब उनके उनसे उड़ करके वो दूसरे पे बैठ गया, उसने चीखना शुरू कर दिया, बहुत ही पैनिक स्थिति हो गई थी उनके लिए। वेटर आया, उस कॉकरोच को पकड़ा और रेस्टोरेंट से जाके बाहर छोड़ दी। चीज एक ही है, कॉकरोच, एक को वो पेन दे रहा है और दूसरे के लिए वो एक सामान्य सी बात है। हम कैसे ले रहे हैं चीजों को, परेशान हो रहे हैं या उसके लिए कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, राइट? छोटा सा काकरोच ही तो है, वो मेरे प्राण तो नहीं ले लेगा ना। या कई ऐसे होते हैं कि घर में एक छिपकली दिख गई कमरे में, वहां घुसेंगे नहीं जब तक कि उसे बाहर ना निकाल दिया जाए। ये तो छोटी छोटी सी चीजें हुई, कभी लाइफ में बड़ी भी यदि ऐसे आप हैं, मैं माउंट आबू में हूं, घना जंगल है यहाँ, आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है, जस्ट सुबह वॉक के लिए 6 बजे का वक्त रहा होगा, निकला वॉकिंग करते करते जंगल में चला गया, रोज का ये क्रम था, मैं तेजी से जा रहा था, अचानक 10 कदम की दूरी पे झाड़ियों से एक चीता निकला और जस्ट निकला, मेरी ओर देखा, मैं भी ठिठका उनकी ओर देखा, मन शांत था क्योंकि हम सब मेडिटेशन करते हैं, ऐसे में कुछ रिएक्ट नहीं करते, मन शांत, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं। थोड़ी देर की बात रही होगी, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यदि यहां मैं पैनिक होता, यहां मैं डरता, तो जो भी जानवर हैं, जब हम डरते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हम पे आक्रमण करने वाले हैं, वो हम पे आक्रमण कर देते हैं। ऐसे ही कई बार भालुओं के साथ हुआ, हम बैठे हैं मेडिटेशन में पहाड़ पे, अब पीछे वाली पहाड़ पे या नजदीक से होते हुए भालू निकल रहे हैं, नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं कि अरे पास में भालू है, भालू है। लेकिन जब आप किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, आपका मन शांत है, आपका मन अच्छे विचारों से भरा हुआ है, शुभ भावना से भरा हुआ है, आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, आपके मन में डर नहीं है, क्योंकि डर उनके अंदर डर पैदा करेगा। आपके मन की शांति उनको भी शांत रखेगा, आपके शत्रु नहीं है वो, अपना कार्य करेंगे, आप अपना कार्य करें। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम शेर के बाड़े में कूद जाएं जाके कि नहीं मैं देखता हूं, चेक करता हूं, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। यदा कदा, यदि अब लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तब की बात, एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि भय सामने वाले व्यक्ति को भी या सामने वाले जीव जंतुओं के अंदर भी उसे जन्म देता है और स्थितियां बिगड़ जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं और कुछ भयंकर हो सकता है। इसीलिए यहां डर की आवश्यकता नहीं। अनेक आपने ऐसे घटनाएं सुने होंगे, देखे भी होंगे, जहां आप पक्षियों को प्रेम करते हैं, मन में बहुत प्रेम का भाव है, वो आपके घर आपके नजदीक आते हैं, आपके कंधे पे बैठ जाते हैं, लेकिन जहां आपके मन में ये भाव है इनको पकड़ो, इनको कष्ट दो, इनको नष्ट करो, आप देखेंगे कि वो आपके इस वाइब्रेशन को भी कैच करते हैं, दूर से ही चले जाते हैं। तो डर की आवश्यकता नहीं, वो भी तो रचना है ना ईश्वर की, इस प्रकृति की रचना है, अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपना आनंद लेने दें, आप अपने आनंद में रहें। इसलिए इनसे कोई डर की जरूरत नहीं। डरते तो वो बल्कि हमसे हैं, वो दूर भागते हैं, हम ना डरें बल्कि उन्हें प्यार करें। प्यार करने का अर्थात गोद में लेना, गले में लपेट लेना किसी सांप को, ये भी नहीं है, लेकिन मन उनके लिए अच्छी भावना और प्यार से, प्रकृति की रचना है, ईश्वर की रचना है, सुख दो, सुखी रहो, जियो और जीने दो, ये हमारी संस्कृति है जो हमें निर्भय बनाती है, उन्हें भी निर्भय बनाती है। कितने साधु संत, अभी भी कई मंक हैं, आपने देखा होगा उनके यहाँ उनके गुफे में या उनके आश्रम में अभी भी शेर रहते हैं, वो शेरों के साथ रहते हैं, मित्रवत है, भय की कोई बात नहीं है। और ये अभी की बात नहीं है, ये तो आदिकाल से हमारे साथ चला आ रहा है, जबकि ये सारे जीव जंतु पशु पक्षी हमसे मित्रवत परिवारवत रहते आए हैं। दूसरी एक बात, हम कई बार असफलता से, कि जीवन में कोई असफलता ना हो, हर एक व्यक्ति सफलता चाहता है, नो डाउट, असफलता से एक डर भय, यदि विद्यार्थी बैठे हुए हैं या आप विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, परिवार में बच्चे, आप जानते हैं परीक्षा एक भय पैदा करता है, इंटरव्यू कई बार भय पैदा कर देता है, आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई नई शुरुआत करने वाले हैं, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, भय, किसी कॉम्पिटिशन में आप भाग ले रहे हैं, वहां कुछ असफलता ऊपर नीचे ना हो जाए, उसका भय। यदि आप मंच पर बोलते नहीं है, आपको मंच पर बोलने के लिए बोल दिया गया, भय, पैर कांपने लगते हैं, क्यों? इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक वो है ना, डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, और कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, पता नहीं बिजनेस की नई शुरुआत तो कर रहा हूं, मार्केट की स्थिति कैसी रहेगी, रिस्पांस कैसा रहेगा, मंच पे चढ़ तो जाऊंगा लेकिन कहीं मेरी बोलती ना बंद हो जाए, लोग मुझ पर हंसे ना, आदि आदि इत्यादि, सो मेनी थिंग्स देयर। और यही सारे विचार, फिर मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी, फिर कहते हैं व्यक्ति अंदर से जीता हुआ हो तो फिर बाहर जीतता है, और अंदर से यदि हारा हुआ हो, अंदर यदि एक ऐसी स्थिति है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या स्थिति होगी, हम समझ सकते हैं, यहां तो जीतूं, यहां तो पहले जीतूं, वहां क्या होगा वो बाद की बात है, पहले मैं यहां जीतूं। इसलिए बहन जी शुरू में ही कह रही थी ना कि युद्ध तो यहां जीतने की बात होती है, यदि यहां मैंने जीत लिया, यहां मेरी पॉजिटिव फ्रेमिंग है, तो बाहर मेरी जीत निश्चित है, निश्चित है। और यदि एक आधी बार पराजय हो भी गई, उसे क्या हम इस रूप में नहीं ले सकते कि चलो ये मुझे अनुभव दे गया, अगली बार मैं ये, अगली बार ये। दो तीन बार भी कई बार असफल होने के बाद, आईएएस का एग्जाम हो, आईपीएस का हो, कोई भी बड़े एग्जाम हो, आपने देखा होगा नीट्स का है, बच्चे करते हैं ना, जो हार जाता है वो फिर हारता रहता है, वो फिर और तरफ निकल जाता है। लेकिन जो सोचता है नहीं, एक बार नहीं कोई बात नहीं, दूसरी बार कोई बात नहीं, तीसरी बार और जोर लगाऊंगा, और जोर लगाऊंगा, उस चींटी की बात बार बार चढ़ रही है, बार बार चढ़ रही है, बार बार चढ़ रही है, तब तक चढ़ती रहती है, तब तक प्रयास करती रहती है, जब तक सफल नहीं हो जाती। उससे तो मैं ये चीज अपने अंदर ले सकता हूं ना, भले गिरूंगा लेकिन चढ़ूंगा, चढ़ के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन यदि हार मान गए होते तो ये लाइट नहीं जल रही होती, मैं आपको नहीं दिख रहा होता, हम प्रकाश में नहीं होते, शायद वही हमारी मोमबत्ती जल रही होती, लालटेन जल रहा होता। प्रयास, चलो हमारा चंद्रमा में हमारा विक्रम लैंड नहीं कर पाया तो क्या हम हार मान लें? हमने अपना पूरा प्रयास किया ना, बेस्ट किया, लास्ट में जाके चलो थोड़ा 19-20 हो गया, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी पीठ थपथपाई ना, कोई नहीं, बेस्ट किया हमने। हार मान ले, बैठ जाए, रोने लगे, क्या हम फतह कर पाएंगे फिर चंद्रमा को, मंगल को, विश्व को, अंतरिक्ष को? नहीं। कलाम जी भी जब मिसाइल बना रहे थे तो पहली बार तो वो भी असफल ही हुए ना, बैठे तो नहीं ना, इसीलिए मिसाइल मैन बन गए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। गीत की पंक्तियां बहुत सुंदर थी, अपने पास रख लें, ये सतत आगे बढ़ने में हमें मदद करता रहेगा। कई बार आलोचना, क्रिटिसिज्म, कोई गाली दे रहा है, आलोचना कर रहा है, पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहा है, मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, अभद्र शब्दावली यूज कर रहा है लोगों के बीच, डर कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई मेरे साथ ऐसा ना करे, और ऐसा कर भी देता है तो मैं अपनी स्थिति गंवा बैठता हूं, मेरी भी मानसिक जो एक होनी चाहिए स्टेबिलिटी वो खत्म हो जाती है। तो डर रहता है कि कहीं कोई ऐसा ना कहे, पीठ पीछे कोई ऐसा ना कहे, कोई मुझे अपमानित ना करे, अपमान से भी एक डर। क्या उस सिचुएशन को भी हम चेंज नहीं कर सकते? हम देखें आज, आज ये चीजें भी कई बार हमें बहुत ज्यादा अच्छे कार्य करने से रोक देती है, अच्छी चीज को सपोर्ट करने से रोक देती है, अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े होने से रोक देती है कि वहां खड़ा होऊंगा, उसे सपोर्ट करूंगा, कहीं अपमानित ना होना पड़े, कहीं लोगों की बातें ना सुननी पड़े। डर, मंच पर यदि कोई आप भाषण कर रहे हैं, कोई आता है और आपको भला बुरा कहने लगता है कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, क्या होगा मेरा रिएक्शन क्या होगा? याद आता है कि अब्राहम लिंकन जी के जीवन की एक घटना है, वो ओथ लेने के लिए जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने जा रहे थे, सीनेटर्स बैठे थे, एक सीनेटर खड़ा हुआ, उसने कहा मिस्टर लिंकन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार के लिए जूते बनाया करते थे। सारे अमेरिका के लोग, संभव है टेलीविजन यदि रहा हो, देख रहे हो, या कम से कम सारे प्रतिष्ठित लोग वो ओथ के लिए जा रहे हैं, सीनेटर्स हैं, राष्ट्रपति को एक सीनेटर खड़े होके ये कहता है अपमानित करने के लिए कि तुमको नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पिता, उनके पिताजी मोची थे, जूते बनाया करते थे, कि तुम्हारे पिताजी हमारे परिवार वालों के लिए जूते बनाते थे। स्थिति कितनी विपरीत है ना, व्यक्ति अपना आपा खो सकता है, भय की तो बात चली अलग है, लेकिन यहाँ तो फिर द्वंद की बात हो सकती है। बहुत सुंदर सा जवाब उन्होंने दिया कि मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे मोची थे, बहुत अच्छे जूते बनाया करते थे, और यदि आपको, आपके परिवार वालों को कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भी जूते बनाने आते हैं, मैं जूते बना के दूंगा। सी, यदि व्यक्ति एक बहुत सुंदर पॉजिटिव फ्रेम में है, मन जिसका शांत है, सशक्त है, वो व्यक्ति इन विपरीत परिस्थितियों को भी टर्न कर देता है, अपने अनुकूल कर लेता है। ऐसे में व्यक्ति आपक हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन ऐसे में भी तो हम भयभीत ना हो कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। यदि कुछ कहता भी है कोई, क्या हमारे पास उसका एक सुंदर उत्तर नहीं है? क्या हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपनी स्थिति के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति के ऊपर, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं? तभी तो उस चीज का डर हमारे अंदर होता है, भय इस चीज का भी होता है। चलिए, भय तब हो जब मेरी कोई कमी हो, कमजोरी हो। यदि मैं झूठ बोलता हूं, यदि मैं चोरी करता हूं, यदि मेरे अंदर कोई गलत आदत है, तब तो मैं डरूं, और डरना भी चाहिए। वही व्यक्ति डरता है जो कुछ छिपाता है, जो डरता है। डर तभी है, झूठ बोल रहा है ना, तो झूठ को छिपाना पड़ेगा ना। एक झूठ को छिपाने के लिए वो 10, 20, 25, 100, हम सब जानते हैं, झूठ बोलना पड़ेगा। कुछ चुराया, झूठ बोलना पड़ेगा, उसे छुपाना पड़ेगा। कोई गलत आदत है, छिपाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज क्यों हो मेरे पास जो मेरे अंदर फियर पैदा करे? फोन आप कभी भी सड़क पे चलते हुए नहीं देखेंगे, पार्क में बैठ करके नहीं देखेंगे, आप ऐसी जगह बैठ के देखेंगे जहां कोई नहीं देख रहा है। क्यों? क्यों? हर वो चीज जो छिपा कर की जा रही है आपके अंदर भय पैदा करेगी, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि आपकी आत्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करती। आपका जो इनर कॉन्सेंट है, कॉन्शियसनेस है, वो बहुत ज्यादा प्योर है, वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरे भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए आप छिपा कर करते हैं। क्यों चोरी? क्यों झूठ? झूठ क्यों? मैं जो हूं, जैसा हूं, सबके सामने रखो ना। कई बार मेरी पढ़ाई ठीक है, उतनी नहीं हो पाई, अब मैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मैं अपनी एजुकेशन को ज्यादा दिखा दूं। मेरे परिवार वाले उतने ज्यादा समृद्ध नहीं है, संपन्न नहीं है, अब मैं अपने मित्रों के बीच लोगों को बताने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए मैं बता दूं कि ऐसा है, ऐसा है। घर में मारुति हो और मैं कहूं नहीं, BMW है, राइट? दो कमरे का या तीन कमरे का घर हो, मैं कहूं नहीं, पूरा ही बंगलो है। तो अब जब कभी भी कोई कहेगा कि चल तेरे BMW में मुझे घुमा, या मैं तेरा बंगलो देखना चाहता हूं, तब तो हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं यार, आज ऐसा है, आज वैसा है, आज ये है, आज वो है, आज छोड़ना, कल कर लेंगे, हाँ परसों कर लेंगे, मैं बताऊंगा ना तेरे को, मैं लेके चलूंगा ना जब घर में अच्छी अच्छी चीजें होंगी। क्यों झूठ? क्यों गलत? यहां हम डरें, और डर होगा भी होगा, क्योंकि हम कुछ छुपा रहे हैं। तो अपनी गलत आदतें, अब हमें खुद ही चेक करना है कि कहां, किस वजह से हम झूठ बोलते हैं, चेंज करें ना। हमें चेक करना है और चेंज करना है, अन्यथा ये भय भले चर्चा में हम ला रहे हैं, लेकिन ये बना रहेगा तब तक जब तक कि ये चीजें हैं, जो चीजें मैं छुपा रहा हूं। अब झूठ बोलने का ये भी भाव नहीं है कि हम जैसे, ठीक है कलयुग में हम हैं, मैं ये भी कहूंगा कि कई एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, हमारे शास्त्रों में आते हैं कि एक दोराहे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक गाय भागी भागी आ रही है, वो राइट साइड पे चली जाती है, कसाई पीछे से भागता भागता आया, थोड़ी देर में कहता है किस ओर गई है गाय बताओ, ने कहा लेफ्ट साइड में गई है। तो यहाँ ये झूठ नहीं है, हम ठीक है, हम अपने विवेक का प्रयोग करते हुए चीजों को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, दूसरों के हित में जो बात हो, समाज के हित में बात हो, हमारे भी हित में बात हो, स्वार्थ ना हो, हित हो, वहां हम युक्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे झूठ जिनकी जरूरत नहीं है, जिनके लिए हमें बार बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है, ऐसी चीजें नहीं, इनसे हम अपने आप को मुक्त करें। भविष्य की अनिश्चितता हमें बहुत ज्यादा डराती है, क्या होगा कल, क्या होगा, इसका भय तो नहीं है मेरे अंदर। अध्यात्म क्यों हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, क्यों ये जीवन जीने की कला सिखाता है? अध्यात्म गैरवी वस्त्र पहन लेना, सफेद कपड़े पहन लेना, कंठी माला डाल करके जंगल में चले जाना, गंगा के किनारे बैठ जाना, हिमालय में तप करना, ये नहीं है। अध्यात्म जीवन जीने का तरीका है। गीता में भगवान के महावाक्य हैं, हे अर्जुन, तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में रह, वर्तमान में रह, वर्तमान को तू श्रेष्ठ बनाएगा तो तेरा भविष्य स्वतः उज्जवल होगा। हम भविष्य की चिंता लेकर के क्यों बैठें? वर्तमान में जिए, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाए। यदि वर्तमान मेरा श्रेष्ठ है, भविष्य के लिए भयभीत होने डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को मैं योग्य बनाऊं, सक्षम बनाऊं, सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं, उन्हें कार्य करना, दक्ष करना, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, योग्य बनाना, ये हमारे हाथ में है। हम ये करें, वर्तमान को अपना बेहतरीन बनाए। भविष्य के लिए चिंता करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि वर्तमान भी हम नष्ट कर रहे हैं, इसीलिए भविष्य की चिंता नहीं। ठीक है, हम योजना जरूर बनाए, लक्ष्य लेकर के हमें चलना ही होता है कि हाँ भाई, कल, परसों, नरसों, एक मास, एक साल, 10 साल के बाद क्या होनी चाहिए हमारी स्थिति, हमारी प्रोग्रेस, चाहे वो व्यवसाय की हो, चाहे हमारे जॉब की हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति की हो, परिवार की हो, योजना हम जरूर बनाए। लेकिन होगा या नहीं होगा, कहीं कोई व्यवधान ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, हाँ, आदि आदि इत्यादि, इनकी कतई आवश्यकता नहीं है, है क्या? यदि आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, अपने पास रखें, लेकिन यदि ये कांटे की तरह चुभ रहा है, निकाल दें, और ये चुभता ही है। आज कितना सुंदर है, ईश्वर ने मुझे आज दिया है, मैं आज में रहूं, उसका आनंद लूं, ना केवल भविष्य की। कई बार भविष्य के साथ मैंने जो चीजें इकट्ठी की है, मेरा जो पद है, मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो संपदा है, मेरा जो सब कुछ, मेरे आसपास जो मैंने इतनी मेहनत से बटोरी है, जमा की है, वो चली ना जाए, कोई छीन ना ले, कहीं नष्ट ना हो जाए, या फिर से मैं वही अध्यात्म की बात कहूंगा, जो सार है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, और गीता में ही ये बात है कि तू लाया क्या था और लेके क्या जाएगा। कितने सुंदर शब्द हैं ये, जो चीजें तू देख रहा है, जिन चीजों का उपभोग कर रहा है, पहले भी थी और तेरे जाने के बाद भी रहेंगी। जब तू मेरा मेरा करता है कि नहीं, मेरा है, मेरा है, मैं बटोर लूं, मैं समेट लूं, मैं बांध लूं इसे, और कोई छीने ना, कोई इसकी ओर देखे ना, देयर इज फियर, वहां भय है, वहां भय है। आकाश खुला हुआ है, सारा संसार खुला हुआ है ना, जल प्रवाहित हो रहा है, सागर इतना विशाल है, हम यदि उसे एक सीमा में बांधते हैं, बांधा नहीं जा सकता, हम भी क्यों अपने आप को सीमा में बांध रहे हैं? वो चला ना जाए, उसका भय जो है, उसका सुख नहीं लेने देता, आनंद नहीं लेने देता। इस चीज पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा आप। अधिकांश लोग हम में से जो है उसका सुख ना लेकर, जो नहीं है उस बात से दुखित है, जो नहीं हुआ है, जो हो ना जाए, इसकी आशंका से जो है उसका सुख नहीं ले रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे हैं। मेरे एक मित्र ने बहुत सुंदर सा वीडियो क्लिप भेजा था कुछ समय पहले, उसमें बहुत सुंदर सी बात थी, और बात ये थी कि एक दोस्त, साइकिल का जमाना था, बहुत पहले का समय था, उस समय साइकिल किसी किसी के पास हुआ करती थी, और उस लड़के ने भी साइकिल चलाना सीखा था, तो उसे था कि मैं भी साइकिल चलाऊं, लेकिन साइकिल थी नहीं। उसके एक दोस्त ने कहा कि मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, ये साइकिल तू रख, तू इसको एंजॉय कर, तू चला। अब 4 दिन तक खूब घुमा इस गली उस गली, इस सड़क उस सड़क, कुछ भी कोना नहीं छोड़ा, सब मजे से। लेकिन चौथे दिन इस बात की चिंता, इस बात का भय, अब कल ये साइकिल चली जाएगी, अब तक मैंने कितना आनंद लिया, मेरे पास होती कितना अच्छा होता, कल आएगा ले जाएगा। 5वें दिन वो दोस्त नहीं आया, लेकिन वो उसका आनंद नहीं ले पा रहा है उस साइकिल का, घर में ही है, पता नहीं कब आ जाएगा, चलाऊं ना चलाऊं, हाँ ले जाऊं ना ले जाऊं, कब आ जाएगा। 6वें दिन फिर भी आनंद नहीं, जो 4 दिन आनंद लिया।